दिन भर तारीख 25 नवंबर दिन रविवार, मैं हूँ मानसी दास। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, अयोध्या में लगाएंगे भगवान राम की विशाल मूर्ति, क्या ये तुष्टिकरण की है कोशिश?
ये टेस्ट केस है 19 के इलेक्शन से पहले कि कितना इसका फायदा ले सकते हैं, और ये जाहिर है कि बीएचपी और आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन के जरिए से ही करा।
कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, 6 चरमपंथियों की मौत।
इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एचएम और लश्कर दोनों के डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, इनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है।
और होगी 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम से बात।
मेरे जैसे कोई पैदा कभी नहीं होगा, मतलब जल्दी नहीं होता है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने धर्म सभा का आयोजन किया। वहीं अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मोदी सरकार अयोध्या में मंदिर बनाने में नाकाम रही तो वो शायद दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। आज अपनी पत्नी और बेटे के साथ रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। ब्रसेल्स में हुई यूरोप के नेताओं की बैठक में अगले साल यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के समझौते का समर्थन किया गया है। इसे मंजूरी देने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जियां क्लॉड यूंकर ने इसे एक दुखदायी दिन कहा। उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छा और संभव सौदा है। उन्होंने कहा कि वह ब्रिटेन के सांसदों को भाषण नहीं देना चाहते जो अगले महीने इसे रद्द कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे सोचते हैं कि इससे बेहतर सौदा हो सकता है तो वह इससे असहमति जताने में सेकंड भी नहीं लगाएंगे। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ये बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की एक अविश्वसनीय दोस्ती थी। उन्होंने कहा,
Ahead of us is the difficult process of ratification as well as further negotiations. But regardless of
हमारे सामने इसकी बहाली की एक मुश्किल प्रक्रिया है और आगे की बातचीत है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना कि यह कैसे खत्म होगा, एक चीज अवश्य रहेगी कि हम अंतिम दिनों तक दोस्त बने रहेंगे। ये थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। अलेप्पो शहर में क्लोरीन गैस से भरे गोले दागने के लिए रूस ने सीरियाई चरमपंथियों पर आरोप लगाया है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि यह हमला इदलिब प्रांत से हुआ है जो जिहादी समूह के कब्जे में है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि सीरियाई सरकार ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में गोले दागे हैं जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त अरब अमीरात में आजीवन कारावास की सजा पाए ब्रिटिश शोधार्थी मैथ्यू हेजेस को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर आशावादी हैं। हेजेस को बुधवार को जासूसी मामले में दोषी पाया गया था, हालांकि वह इन आरोपों को नकारते रहे हैं। लंदन में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने पुष्टि की है कि उनके परिवार की दया के अनुरोध पर विचार किया गया है। हंट ने कहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में अपने समकक्ष से दोबारा बात करेंगे। उन्होंने कहा,
I am more optimistic as we sit here now that we can find a way through this.
मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं बेहद आशावादी हूँ ताकि हम इसका रास्ता तलाश सकें। संयुक्त अरब अमीरात ब्रिटेन का लंबे समय से दोस्त रहा है और वहाँ के विदेश मंत्री से मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही है। दोपहर को मैं उनसे दोबारा बात करने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं रास्ता तलाश सकता हूँ। ये थे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट के शब्द। स्विट्जरलैंड में गाय और बकरियों के सींग काटने से रोकने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। वर्तमान में किसान इनके सींग इसलिए हटा देते हैं ताकि वह जानवरों को घायल ना कर पाए। यह जनमत संग्रह किसान एरमिन के पोलो के 8 साल के लंबे अभियान के बाद हो रहा है, जिनका कहना है कि यह प्रक्रिया दर्दनाक और अप्राकृतिक है। स्विट्जरलैंड में लोग इसके लिए भी मतदान कर रहे हैं कि घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर तवज्जो दी जाए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से, जहां शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जहां आज धर्मसभा का आयोजन किया गया है। मांग है कि लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर बनाने की तारीख की घोषणा की जाए। आज विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वो मंदिर के मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा को उन्होंने सीधे चुनौती दी थी और कहा था कि अगर मंदिर नहीं बना तो शायद भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। इधर आज नागपुर में भी हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस बीच उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर विशाल मूर्ति लगाई जाएगी। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे इस बात का विश्लेषण कि क्या मूर्ति बनाने का फैसला नाराज साथियों को मनाने की भाजपा की कोशिश है। लेकिन पहले जानते हैं कि आज अयोध्या में क्या कुछ हुआ। ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की अयोध्या में मौजूद हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र से।
देखिए, कल शाम तक तो ऐसा नहीं लग रहा था कि धर्म सभा में भाग लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आज सुबह तड़के जितनी सड़कें अयोध्या की ओर आने वाली हैं और हर लोगों की भीड़ जो कि समूहों में आ रहे थे और नारेबाजी करते हुए आ रहे थे दिखनी शुरू हो गई। करीब 11 बजे से धर्म सभा की कार्रवाई शुरू होनी, 100 से ज्यादा संत वहां बैठे हुए थे, बड़ा सा मंच था। सभी संतों ने एक जैसी ही बात की लगभग, और सबका लबो लुबाब कहा जाए तो यही था कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं चंपत राय, उन्होंने कहा एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा मानसी की, इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूरी जरूर बना रखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के होर्डिंग्स दिख रहे थे जो कि वहाँ शामिल हुए थे और जो गए हुए थे। कई संतों ने खुले तौर पर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर सकती है। उन लोगों ने पूरा विश्वास जताया, ये भी कहा कि जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो विपक्षी दलों की ओर से अटकाए जा रहे हैं। एक चीज यहाँ मैं और इस एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि संतों का ये दावा था जो मंच पर मौजूद थे कि जितने भी संत संप्रदाय हैं या हिंदुओं के बीच जो तमाम तरह के संप्रदाय हैं और खंड हैं वो सारे एकजुट हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संतों का एक अखाड़ा होता है, जो अखाड़ा परिषद होता है और जिसका बड़ा महत्व है, उस अखाड़ा परिषद ने इसका बहिष्कार किया था और उसको जो कर्ता धरता है तमाम लोग हैं वो इसमें शामिल भी नहीं हुए थे और उन लोगों ने बाकायदा इस धर्म सभा में न आने की बात कही थी और इसके बहिष्कार की बात कही थी।
समीरात्मज मिश्र ने ये भी जानने की कोशिश की कि धर्म सभा से निकल रहे लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी।
कहाँ से आए हैं?
लखीमपुर खीरी।
कैसा रहा?
बहुत बढ़िया रहा, भीड़ बहुत थी, आदमी को बहुत कठिनाई हुई निकलने बैठने में। हम आ गए थे 11 बजे, उससे पहले सभा चालू हो चुकी थी।
मंदिर बनाने को लेके क्या हुआ?
हाँ, मंदिर ये प्रदर्शन था कि जागृत है हिंदू या नहीं।
और आप बाबा जी कहाँ से आए हैं? बड़ा
हम आए हैं विशेषगंज से, छावनी के पास से।
बस्ती जिला से।
से
बड़ी दिक्कत हुई होगी आने में, बहुत भीड़ भाड़ थी।
हाँ,
दिक्कत तो नहीं हुई?
कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, तो क्या रहा यहाँ पे? क्या
बहुत सुंदर रहा है और हम लोग मंदिर चाहते हैं।
तो क्या बताया संत लोग की कब बनाएंगे?
अभी धर्म संसद वहाँ पर अध्यादेश जारी करेंगे और प्रस्ताव लाएंगे, उसमें जो हल होगा वही होगा। संत लोग तारीख क्या बताएंगे, जब तक वहाँ निर्णय नहीं होता सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करेगा।
संतों ने कहा कि हम जो है 11 दिसंबर तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हम इंतजार नहीं करेंगे।
तो फिर से एक सभा इसे बुलाएंगे,
फिर जो है एक सांकेतिक सभा जो है 9 दिसंबर को दिल्ली में होगी।
कहाँ से आए हैं आप लोग?
बहराइच से आए हैं।
सभी लोग अलग अलग?
सभी लोग।
तो क्या रहा?
रहा जो हम लोग यहाँ आए और बहुत ही अच्छा धर्म सभा का आयोजन हुआ है और बहुत ही अच्छा यहाँ कार्य हुआ है और मंदिर बन के ही रहेगा।
जैसा हमने अभी कार्यक्रम में बताया, नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है वहां भी मंदिर मुद्दे पर हुंकार रैली हुई, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। अब से थोड़ी देर पहले मैंने नागपुर में मौजूद हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी से बात की और जाना कि आज वहां क्या क्या हुआ।
ये हुंकार सभा दरअसल राम जन्मभूमि मसले पर जन समाज की जो भावनाएं हैं उन्हें जुटाने का एक प्रयास था और यही प्रचारित भी किया गया था। आज जो कार्यक्रम हुआ वो नागपुर के संघ मुख्यालय से कुछ दूरी पर ईश्वर चंद्र देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ।
और संतों का मार्गदर्शन सुनना है आज के इस नागपुर के ऐतिहासिक सभा में। संतों के साथ
सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत इस कार्यक्रम में भाषण करेंगे या नहीं करेंगे इस पर काफी समय से दुविधा चल रही थी। आज दोपहर को आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वो इस कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि संबोधन भी करेंगे और उन्होंने जो संबोधन किया उसमें साफ तौर पर ये कह दिया कि पिछले वर्ष राम जन्मभूमि मसले पर धैर्य रखने की मैंने बात कही थी लेकिन आज मैं कह रहा हूँ अब धैर्य की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि हो सकता है कि सरकार की दिल में इच्छा हो कि कानून बने और कानून से लेकिन कुछ अड़चने हो तो यदि जनमानस का दबाव बने तो सरकार की अड़चने दूर हो जाएंगी और मार्ग प्रशस्त होगा।
वर्षों से मांग कर रहे अभी तक सुनवाई तक नहीं होती है, मन में असंतोष है। जनहित के मामले टालते रहना इसमें क्या अर्थ है भाई? एक छोटी सी बात है, निर्णय कर देना है। नीचे मंदिर था ये स्पष्ट है।
इस अवसर पर खास तौर पर ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य उपस्थित थे उन्होंने कहा कि यदि राज्यसभा में कानून पारित करने की अड़चने आती हैं तो साफ तौर पर सरकार के सामने पर्याय है कि दोनों सदनों का विशेष संयुक्त सत्र बुलाकर और इस अधिवेशन में इस कानून को पारित किया जाए। यदि कानून गिर भी जाता है तो भी सरकार दोबारा चुन के आएगी।
जी, तो कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है इसमें एक तरह से भाजपा को इस तरह की उम्मीद दी गई है कि अगर आप ये मुद्दा संसद में उठाते हैं और अगर आप सफल नहीं होते तो भी हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले RSS और VHP दोनों ही ये कहती आई थी कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो वो BJP को अगले इलेक्शंस में वोट नहीं देंगी।
जी बिल्कुल, खास तौर पर आज की जो सभा है उसका पूरा लुबाग से यही लगता है कि सरकार के ऊपर किसी तरीके से दबाव बने ताकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये कहा जा सके कि जनता का दबाव है और जनता के दबाव के सामने इस तरह का फैसला लेना अब लाजमी हो गया है।
जानकारी दे रहे थे संजय रमाकांत तिवारी। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल में अमित शाह ने समाचार चैनल ABP न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वो संवैधानिक रास्ते से राम मंदिर बनाएंगे और कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।
उनको लगता है देरी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि 19 के बाद सुनवाई हो। हमारी पार्टी की सरकार ने वहां कोर्ट में कहा है इसकी जनरली सुनवाई होनी चाहिए। देश का सबसे पुराना मुकदमा है मगर निर्णय कोर्ट ने करना है।
और अब आज दबाव के बीच प्रदेश सरकार ने राम की मूर्ति बनाने की घोषणा की। तो क्या राम की मूर्ति के बहाने फिलहाल भाजपा नाराज साथियों की तुष्टिकरण की कोशिश कर रही है? अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शरद प्रधान से और उनसे यही सवाल किया।
हाँ, गुड ह्यूमर में रखने के लिए वो कर रही थी। उसमें उनको मालूम, जो उनके लीडरान हैं चाहे वो VHP BJP और RSS के जितने लीडरान हैं वो तो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। ये नाराजगी तो नीचे के काडर्स में जरूर दिखती है, वो रियल होगी। और बाकी जो कुछ ये करते हैं वो मिलजुल के करते हैं, कोऑर्डिनेट करके करते हैं। इससे ज्यादा तो कोऑर्डिनेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा जितना ये लोग करते हैं। ये मकसद इसके पीछे ये दिखाना जो एक तबका है जो नाराज है कि भाई अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना, जो वाकई में सोचता है उसको जुनून है मंदिर का, उसको बताने के लिए नहीं नहीं देखो हम लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं। और बाकी उस एलिमेंट को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो मंदिर के लिए तो है लेकिन वो मंदिर के लिए जाके अपना जान देने को तैयार नहीं। वो एक वोटर इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वो फेंस सिटर वोटर होता है, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और उसी से जीत और हार होती है। उधर BJP खामोश रहती, BJP नहीं कुछ बोलती है, बोलती नहीं हम उस कानून को फॉलो करेंगे, और इधर इन लोगों से उठवा देते हैं, उसको हाइप देते हैं। हाइप देके पूरी इस कंट्री में भर में उन्होंने मैसेज दे दिया कि देखिए मंदिर इशू अलाइव है। दूसरा मकसद इसके पीछे ये भी है जो बड़ा नाजायज सा है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर ले इसके जरिए से। संडे का दिन है इसीलिए संडे के दिन रखी गई है कि हर आदमी देखेगा टेलीविजन और इतना बड़ा इशू है है, तो जो देखेगा वो उसके समझ में आएगा और ये कितना बड़ा हुजूम आया है, इतने सारे लोग हैं, पूरे देश भर के लोग हैं। अब शिवसेना में लोग महाराष्ट्र लाए गए थे शिवसेना के शो के लिए जो कल हुआ।
सर आपने जिक्र किया शिवसेना का, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी, उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार कम है और ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर शिवसेना अयोध्या में सभा कर रही है, इस पर थोड़ा बताएंगे कि आखिर आपको क्या लगता है, मामला क्या है?
देखिए ये सारा खेल पोस्टरिंग का है। उद्धव ठाकरे अगर वाकई में मंदिर में इंटरेस्टेड थे और वो जगाना चाहते थे, जैसा उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि वो कुंभकर्ण सो रहे हैं 4:30 बजे हम जगाने आए, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप भी तो कुंभकर्ण थे, आप भी तो 4:30 साल सोते रहे, आप तो उनके पार्टनर है, एलआई है, अभी आपको क्यों याद आया जब इलेक्शन अगले साल आने वाला है और आपको ये तय करना है कि आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के लिए तो दो मकसद हैं कि ये इलेक्शन जो खासतौर से जो तीन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे मंदिर जैसे मुद्दे की अहमियत होती है, तो वहां पे भी ये एक टेस्ट केस है 19 के इलेक्शन से पहले कि इसका क्या असर होता है और कितना इसका फायदा ले सकते हैं। इस वजह से भी स्ट्रेटेजिकली ऐसे टाइम पे उठाया गया है और ये जाहिर है कि बीएचपी और आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन के जरिए से ही करा गया है।
कुछ इस बात में शक तो होता है कि हाँ कुछ प्लानिंग होगी, क्योंकि जब ये इवेंट ऑलरेडी जो है अयोध्या में दिन तय हो चुका है, उसके करीब हफ्ते भर पहले अमित शाह टीवी पर इंटरव्यूज देते नजर आते हैं।
बिल्कुल, ये जो कुछ हो रहा है पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है और इससे गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट को कि आप जल्दी करो। ये सारा कुछ आप देखिए, ये सारा बिल्डअप शुरू हुआ है आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये कह दिया कि हमारे लिए इसकी अहमियत नहीं है, हमारा जब टाइम होगा इसको सुनेंगे, और जनवरी को डेट लगा दी, उसके बाद से ये सारा शुरू हुआ तमाशा।
उत्तर प्रदेश इस वजह से चर्चा में रहता है कि वहाँ बच्चों की मौतें इंसेफेलाइटिस से होती हैं, वहाँ बच्चों की मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौतें होती हैं, पुल गिरकर लोगों की मौतें होती हैं, किसान गायों से परेशान हैं जो खेत चर जाती हैं, चमड़ा उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याएं, गरीबी कम नहीं है, लखनऊ से दूर जाते ही गरीबी दिखने लग जाती है, सुविधाओं की कमी भी दिखने लग जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का मूर्ति बनाने के लिए करोड़ों के खर्च का ऐलान, क्या कहेंगे आप इसे, या फिर सिर्फ उस मुद्दे के सहारे 19 तक ये इलेक्शंस जीतेंगे और उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि आगे क्या होगा?
स्ट्रेटजी है ये जो मूर्ति बनाने की रामचंद्र जी की, वो भी किसी को यही आइडिया आया सरदार पटेल की मूर्ति के बाद कि अगर अभी जो है क्योंकि हम मंदिर बनाने में कामयाब नहीं हो सकते तो क्यों ना एक ऐसा आडंबर किया जाए कि लोगों को लगे कि भाई हम वाकई में रामचंद्र जी के नाम को ऐसे हम इग्नोर नहीं कर रहे। तो उन्होंने छोड़ दिया ये शगुफा की साहब एक मूर्ति लगाई जाएगी, भव्य मूर्ति होगी राम की और वो देखने के लिए होगी और पूजा करने वाली तो ऑलरेडी है मूर्ति वहाँ। अब क्योंकि केंद्र में भी नहीं की सरकार बैठी तो पैसा मिलना तो मुश्किल होगा नहीं, हजारों करोड़ रुपया लगा देंगे। और ये वो लोग हैं जो मायावती को क्रिटिसाइज करते थे जब मायावती ने मूर्ति कल्चर शुरू किया था अपने टाइम में जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये सब उसके बड़े क्रिटिकल थे। और आपको ताज्जुब होगा बाकी चीजों की बात नहीं करते, कभी रिश्वतखोरी के खिलाफ नहीं बात करते, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, राइजिंग नंबर ऑफ रेप्स की बात नहीं करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग की बात नहीं करते हैं, बीमारियों की बात नहीं करते हैं, ये खाली सोचते हैं कि बस आप मंदिर की बात करिए और गाय की बात करिए तो आप हिंदू हैं। तो सारा वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्योंकि इसके जरिए से माहौल बना सकते हैं, वोट ले सकते हैं।
चुनावों से ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाना सोची समझी रणनीति है, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर, जहां के शोपियां में आज हुई मुठभेड़ में 6 चरमपंथियों समेत एक जवान की मौत हो गई है। बीते 3 दिनों में अलग अलग मुठभेड़ों में यहां 17 चरमपंथियों की मौत हुई है। सुनिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
इतवार देर रात को सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियां के बडगुंड में चरमपंथियों के छुपे होने की एक सूचना के आधार पर बडगुंड इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था, जिस दौरान इलाके में छुपे चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी चरमपंथियों के खिलाफ दावा बोला। दोनों तरफ की गोलीबारी में पुलिस ने 6 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान भी मारा गया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए 6 चरमपंथियों में से 5 चरमपंथी स्थानीय थे जबकि एक चरमपंथी पाकिस्तानी था। जिला शुपियां के SSP संदीप चौधरी ने BBC को बताया।
कल रात एक स्पेसिफिक इनपुट पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरा पटकुंड विलेज है शुपियां डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जिसमें 6 मिलिटेंट्स मारे गए जिनमें से 4 हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे और 2 लश्कर ए तैयबा से। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि HM और लश्कर दोनों के डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। इनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक लड़का 34RR का आर्मी का शहीद हो गया, लेकिन उसने बड़े गर्व से अपनी देश सेवा में अपनी जान नच पिछावर।
इलाके में मुठभेड़ की खबर फैलने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किए। मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के दौरान एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई है और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। बीती शुक्रवार को दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी एक मुठभेड़ के दौरान 6 चरमपंथियों को मारा गया था। इससे पहले एक दिन दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियां के नादीगाम इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 चरमपंथियों को मारने का दावा किया था, जबकि उस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी मारा गया था। पुलिस ने बताया है कि इतवार को एक दूसरी मुठभेड़ में श्रीनगर के खीव इलाके में जैश मोहम्मद का एक चरमपंथी मारा गया है। कश्मीर के अलगाववादियों ने कल सोमवार को बीते 3 दिनों में मारे गए 17 चरमपंथियों और एक आम नागरिक की मौतों के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाया है। बीते 3 दिनों की अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए चरमपंथियों में कई बड़े चरमपंथी कमांडर भी शामिल थे। दक्षिणी कश्मीर बीते कुछ वर्षों से चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। बीते 2 वर्षों में सबसे ज्यादा चरमपंथी दक्षिणी कश्मीर में मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब बात एमसी मैरी कॉम की, जो महिला मुक्केबाजी की दुनिया में एक मिसाल बन चुकी हैं। कल मैरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 बार स्वर्ण पदक जीता। 3 बच्चों की देखभाल के बीच 35 साल की मैरी कॉम के मुक्कों का दम कम नहीं हुआ है। सुनिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
ये बहुत कम लोग होता है, मेरे जैसा कम लोग होता है, सॉरी मजाक भी है, मेरे जैसे कोई पैदा कभी नहीं होगा, मतलब जल्दी नहीं होता है। मैं क्या बोलूँ, सबको मेरे जैसा बनाना चाहता है तो नहीं हो सकता ना। ये लोग भी सीख जाएगा आराम आराम से, देश के लिए बहुत मेडल जीतने वाला लोग है।
ये मासूम सा जवाब था एमसी मैरी कॉम का, जब उनसे पूछा गया कि भारत की ओर से केवल आपने स्वर्ण पदक जीता तो क्या अनुभव आपके काम आया जो बाकी खिलाड़ियों के पास नहीं था। और ये बात सच भी है, क्योंकि कल दिल्ली में जब 10वीं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप समाप्त हुई तो भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 4 पदक थे। एमसी मैरी कॉम ने तो खैर रिकॉर्ड 6ठी बार स्वर्ण पदक जीता, लेकिन 57 किलो भार वर्ग में सोनिया चहल भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो जर्मनी की और नेला वाहनेर से 4-1 से हार गई।
सिल्वर मेडल लेके अपने देश का नाम रोशन किया और आगे कोशिश करूंगी इस रंग को चेंज करने में गोल्ड के लिए, तो और ज्यादा मेहनत करूंगी। बहुत टफ कंपटीशन हो गया है, अब काफी स्ट्रॉन्ग लड़कियां आने लग गई है, तो मुकाबला पूरा टक्कर का होने लगे।
आपकी आंख के नीचे चोट भी है, बड़ा जबरदस्त पंच लगा होगा।
जी हाँ, ये जो सेमीफाइनल जो बाउट थी वो काफी हार्डी प्लेयर थे तो थोड़ा सा लगा होगा, ये तो आम बात है, लगते रहते हैं पंचेस,
लेकिन इन्हें सहना इतना आसान नहीं होता जितना बाहर से देखने में लगता है। एमसी मैरी कॉम ने पहली बार साल 2001 में अमेरिका में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और उसके बाद साल 2002 में टर्की में पीले रंग का जगमगाता सोने का पदक जीता। उसके बाद तो उनकी कामयाबी सबके सिर चढ़कर बोलती ही चली गई, इतनी की पूर्व राष्ट्रीय महिला और पुरुष कोच वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी जीएस संधु के पास शब्दों की कमी पड़ गई।
मैरी इज सुपर्ब, शी इज रियली मैग्निफिसेंट मैरी, इट इज एन अनमैचेबल परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 35। आई थिंक, आई डोंट नो किस चीज की बनी है वो, भगवान ने पता नहीं कैसे फ्री बैठ के बनाई है, मुकाबला ही नहीं उसका, मैचलेस।
निशब्द हो जाना मजबूरी है, क्योंकि मैरी कॉम ने पहले दौर में बिली बाई के बाद दूसरे दौर में कजाकिस्तान की कासोना युवा को, क्वार्टर फाइनल में चीन की वो यू को, सेमीफाइनल में नॉर्थ कोरिया की किम हायांग बी को और फाइनल में अपने से उम्र में कहीं अधिक कम यूक्रेन की हन्ना अखोटा को मात दी। वो एक राउंड भी नहीं हारी, यानी उन्होंने सारे मुकाबले एक तरफा 5-0 से जीते। लगातार 20 राउंड जीतने वाली एमसी मैरी कॉम को भी क्या हार से डर लगता है?
कुछ भी हो सकता है बॉक्सिंग में, एक तो हारेगा एक तो जीतेगा, लेकिन बहुत आसानी से नहीं हरा सकती है, वो लोग भी बहुत दिक्कत से जीत जाएंगे। यही कहने मतलब है।
मैरी कॉम की ताकत को कोई हंसी मजाक में क्यों नहीं ले सकता, वजह बताते हैं कोच रहे जीएस संधु।
6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है और एक बार सिल्वर भी है। कुछ देर पहले मैं कोच था तो मैं उसको देखता था कि पहले 3 मैच है, रनिंग करा लो चाहे कोई करा लो, शी इज क्रेजी। पार्लियामेंट जाती थी लेकिन ट्रेनिंग मिस नहीं करती थी, कभी भी एक भी ट्रेनिंग सेशन उसका मिस नहीं हुआ। जिसमें भी शक नहीं है कि ओलंपिक में मेडल मार जाए वो।
तीन बच्चों की माँ, बढ़ती उम्र, लेकिन अब अगली चुनौती का सामना कैसे करें? मैरी कॉम को सुनकर पता चलता है कि उनकी सोच कितना आगे है।
शुरू होता है ना अभी से कॉम्पिटिशन नेक्स्ट ईयर अगेन इट्स कम यू नो, वो तो अगेन मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपना तरफ से तो पूरा कोशिश करूंगी कि कैटेगरी चेंज करना है इसमें, और कैसे स्टाफ है, ट्रेनिंग कोचिस लोग है, और न्यूट्रिशन लोग है, फिजियो है, सुनती हूँ जो सही लगा हाँ सही है, नहीं चला मैं डायरेक्टली बोलती हूँ मैं ये नहीं करूँगी, ये मैं पसंद नहीं है।
और जब ऐसी समझदार और दमदार खिलाड़ी साथ हो तो फिर टीम की दूसरी खिलाड़ी भी क्यों ना खुश हो। आने वाले समय की स्टार खिलाड़ी सोनिया चहल कहती हैं,
हम बहुत खुश हैं, हमें प्राउड है कि हमारे इंडियन देश में से ऐसे बॉक्सर निकले हैं जो 6 बार अब वर्ल्ड चैंपियन हो चुके, ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर हैं, और उनको देख के हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो हम भी उनकी तरह ही बनना चाहेंगे।
और खुद मैरी कॉम कब तक मुक्केबाजी रिंग में अपना जलवा दिखाती रहेंगी? वो अभी तक 48, 45, 46, 41 और 51 किलो भार वर्ग में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। इतनी बार 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 भार बदलकर चैंपियन बनना कोई उनसे ही सीखे। मुक्केबाजी रिंग को अलविदा वो भी कहना चाहती हैं, मगर आसानी से नहीं।
इन बिटवीन में थोड़ा बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन वेट कैटेगरी में चेंज करना पड़ा, नहीं तो कितना वो चैंपियन बन के आ जाता हो गया यही था मतलब, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आ जाओ, लड़की लोग भी मेरे को चैलेंज करके आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अभी तक बीट नहीं कर पा रहे इसलिए खेल रही हूँ बस।
इस बार विश्व महिला चैंपियनशिप में चीन 4 स्वर्ण और 1 रजत सहित 5 पदकों के साथ पहले, चीन ताइपे 2 स्वर्ण सहित दूसरे, और भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 4 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। शुक्र है मैरी की बदौलत गोल्ड मिला।
और अब रुख क्रिकेट की दुनिया का। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 6 विकेट से हरा दिया है। सबसे शानदार प्रदर्शन रहा विराट कोहली का, जिन्होंने 61 रन बनाए। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कप्तान विराट कोहली के अलावा किसका बल्ला चमका।
जी देखिए, जाहिर सी बात है कि शिखर धवन जो कि फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने 2020 सीरीज में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने आज केवल 22 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 41 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, और फिर जाते जाते दिनेश कार्तिक ने नाबाद 22 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत के सामने जीत के लिए जो 165 रनों का लक्ष्य था वो भारत ने आसानी से 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और इसी के साथ ये जो सीरीज है 3 मैचों की 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई। अब दोनों ही टीमों के बीच 4 टेस्ट मैचों के सीरीज का पहला टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। और मानसी जी इंतजार होगा कि महिला विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या हुआ, जहां आज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से बहुत आसानी से मात दी। फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन वो 19.4 ओवर में केवल 105 रनों पर सिमट गई। डेनियल वेट ने 43 और कप्तान हीदर नाइट ने 25 रन बनाए, बाकी कोई भी खिलाड़ी नहीं चली। ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर ने 22 रन देकर 3 और जॉर्जिया बेरहम ने 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहुत आराम से केवल 15.1 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। एलिसा हिली ने 22 रन बनाए, और उसके अलावा एशली गार्डनर नाबाद रही 33 रन बनाकर, मैग लेनिंग नाबाद रही 28 रन बनाकर। तो चौथी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस विश्व कप को जीता। और जहां तक भारतीय टीम की बात है, आप जानती हैं कि किस तरह से सेमीफाइनल में बाहर
हो गई थी। जी धन्यवाद राजेश कुमार गुप्त जानकारी के लिए। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने धर्म सभा का आयोजन किया। वहीं अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मोदी सरकार अयोध्या में मंदिर बनाने में नाकाम रही तो वो शायद दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। ब्रसल्स में हुए यूरोप के नेताओं की बैठक में अगले साल यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के समझौते का समर्थन किया गया है। अलेप्पो शहर में क्लोरीन गैस से भरे गोले दागने के लिए रूस ने सीरियाई चरमपंथियों पर आरोप लगाया है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आजीवन कारावास की सजा पाए ब्रिटिश शोधार्थी मैथ्यू हेजेस को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर आशावादी हैं। स्विट्जरलैंड में गाय और बकरियों के सींग काटने से रोकने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सवेरे 6:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।